अब उस सूरत को शुरू करते हैं जिसका आप में से बहुत सारे लोगों को इंतजार होगा। सूरत अर-रहमान, नाम ही इतना प्यारा है कि बस दिल में मोहब्बत आने लगती है। किसका नाम है ये? अर-रहमान, सूरत अर-रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर-रहमान अल्लम अल कुरान, खलक अल इंसान, अल्लमहुल बयान, अश्शम्स वल कमरु बि हुस्बान, वन नजमु वश्शजरु यस्जुदान। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम वाला है। रहमान ने कुरान सिखाया, इसी ने इंसान को पैदा किया, इसे बोलना सिखाया। आफताब और माहताब मुकर्रर हिसाब से हैं और सितारे और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। इसी ने आसमान को बुलंद किया और इसी ने तराजू रखी ताकि तुम तोलने में तजावुज न करो। व अकीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख्सिरुल मीज़ान, इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोल में कमी न करो। और इसी ने मखलूक के लिए जमीन बिछा दी, इसमें मेवे हैं और खोशे वाले खजूर के दरख्त हैं और भुस वाला अनाज है और खुशबूदार फूल हैं। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पस ए इंसानों और जिन्नों, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को छुटलाओगे? किसी को नहीं अल्लाह। ला बिशय्यिम मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। ये जवाब अल्लाह के नबी सल्लम से मनकूल है कि शायद को सुन के आपने कहा कि जिन्नात के सामने मैंने ये सूरत पढ़ी तो वो इस बात पे ये कहते थे कि अल्लाह हम तेरी किसी नेमत को झुठलाते नहीं और तारीफ तेरे लिए। तो अगर सिर्फ उर्दू जुबान ही सुनते वक्त दिल में इस ख्याल को रखें तो इंशाल्लाह इस बात पे अमल हो सकता है। खलक अल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, हमने इंसान को बचने वाली मट्टी से पैदा किया जो ठीकरी की तरह थी, और इन जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? किसी को भी नहीं। वो रब है जो दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का है। तो ऐ जिन्नो और इंसानों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? मरज अल बहरैन यल्तकियान, इसने दो दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं। इन दोनों में एक आड़ है, इससे भर नहीं सकते। बस अपने परवरदिगार की कौन सी नेमत को झुटलाओगे? यखरुजु मिन्हुमल्लुअल मरजान, इन दोनों में से मोती और मूंगे बरामद होते हैं। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? और अल्लाह ही की मलकियत में है वो जहाज जो समंदरों में पहाड़ों की तरह बुलंद चल रहे हैं। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पस ए जिन्नो और इंसानों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? किसी नेमत को नहीं झुटला सकते और अल्लाह तेरे ही लिए हम्द है। ये था रुकू नंबर 11। इसका उन्वान क्या है? रब की रहमतों की नुमाइश। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला इस पूरी सूरत में अपनी नेमतों को नुमाया करके पेश करते हैं। रब की रहमतें हैं कितनी, 13 नेमतों का जिक्र हुआ इस रुकू में। और अब इस शऊर से इनको सुनकर लिखें कि क्या फिर वाकई सूरत अर-रहमान से मोहब्बत के साथ साथ उस रब से भी है जो खुद अर-रहमान है। नंबर 1, पहली रहमत क्या है उसकी? कुरान। दूसरी, कुरान की तालीम। आप क्या सोच रहे थे पहली नेमत क्या होनी चाहिए थी? किसी को इस तरतीब पे कोई एतराज तो नहीं? ये कोई रहमत की बात है क्या? हम कुरान को एक रहमत समझते हैं? उसको तो समझते होंगे, उसकी तालीम को रहमत समझते हैं या जहमत? दिन तो नहीं गिन रहे। अल्लामल कुरान, मैं जब इस आयत पे पहली पे आती तो मैं रुक जाती। मैं कहती अल्लाह ताला तेरे मेयार क्या है और हमारे क्या? आज किसी से कहा जाए अल्लाह आप पे रहमत करे तो पहला सवाल क्या दिल में आता है? यदि आपको कोई दुआ दे अल्लाह ताला आप पे रहमत करे तो अमूमन क्या जवाब जहन में आता है कि इसने मुझे क्या दुआ दी? अल्लाह का कुरान और उसका इल्म। अब देखिए कि इससे बड़ी रहमत कोई नहीं हो सकती। 10 बेटे भी किसी के हो जाए ना, वो उस रहमत को नहीं पा सकते जो अल्लाह के दीन को सीखना और सिखाने की रहमत है। कोई अगर आपसे कभी ऐसी हमदर्दी करे ना, मतलब बाज़ दफ़ा देखे कभी किसी के कोई औलाद नहीं या किसी के घर नहीं, तो लोग अच्छा अल्लाह तुम पे अपनी रहमत करे, तो आप क्या कहें कि इस साल मेरे ऊपर बड़ी रहमत हुई। वो सोचेंगे शायद आप पता नहीं कोई उम्मीद लग गई, कौन सी रहमत हुई कि आपने इतने थोड़े से वक्त में इतना कुरान सीख लिया। क्या आपको वाकई दिल से इस चीज़ की कदर महसूस होती है? दिल से ऊपर से तो बहुत होती है, आप वाकई इसको एक रहमत समझते हैं अपने इन दिनों को? मुझे तो मेरा दिल उदास हो गया, कल आज भी सुबह मैं देख रही थी तो मैंने कहा चार पारे रह गए, आखिरी हफ्ता आज, क्या रहमत रुक जाएगी? ये रहमतों के महीने गए तो रहमत रुक जाएगी? रमजान तो रहमतें दे के जाता है, हमने कितनी समेटी ये हमें उससे अगले महीनों में पता चलता है। फिर दूसरी रहमत इससे आगे की लिखिए, इंसान की तख्लीक। मेरा दिल चाह रहा है मैं इस पर आपको तदब्बुर कराऊं, लेकिन अब वक्त नहीं दे इतनी इजाजत देता, वरना इसी तरह अब इंसान की तख्लीक पे सोचें। ये रहमत है, अपने वजूद को देखें, आंखों को देखें, कान को देखें, हाथों को देखें। आगे देखिए, बयान की ताकत। ये जुबान ना होती अपनी बात बयान कर सकते थे? गूंगे लोगों से पूछे, दिल में जज्बात मचलते हैं, कोई बात सुनी हो किसी को बताने के लिए कितना तड़पते हैं, जरा सोचें अगर जुबान साथ ना दे क्या होता है। कभी बहुत बड़ी खुशी सामने आती है ना तो जुबान लुढ़कने लगती है, बोलते नहीं, जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते, कितनी झुंझुनाहट होती है। मेरा मतलब ये था, मैं ये कहना चाह रही थी, खामोश। बोलने की ताकत, अल्लाह ने बोलना सिखाया, कभी इसको रहमत सोचा? और कैसे इस्तेमाल करें इस बोलने की नेमत को? अब देखिए कि अपनी जुबान समझना भी बहुत बड़ी रहमत है। आप उर्दू सुनते हैं तो आपको एक अजीब एहसास होता है, एक कैफियत अपनायत की आती है, कि ऐसे लोगों में फंसे हों जहां कोई आपकी जुबान ना बोले। मैंने इसको लिटरली महसूस किया, यानी जब मैं इजिप्ट में थी, मैंने पूरे ट्रिप के बिल्कुल आखिरी दिन, आखिरी वीक, दो तीन दिन पहले मैंने पहली दफा वहां किसी की उर्दू की आवाज सुनी। और वो भी कब के, जब हम कायरा गए और एक होटल में हम रुके, तो वहां जिस रूम में हम थे, तो जब हम गए तो उस होटल वाले ने जब हमें देखा, मैं नहीं जानते और कहां से तुम लोग, तो बताए पाकिस्तान से, तो कहने लगे कि मेरे पास होटल में इस वक्त पाकिस्तानियों का एक ग्रुप आया हुआ है, कोई डॉक्टर्स हैं किसी वजह से, उसने पहले ये खबर दे दी। फिर उसके बाद, हालांकि वो अरब था, जब हम अपने कमरे की तरफ जा रहे थे तो मैंने देखा कि सामने कमरे में एक शख्स निकल रहा था, तो उसने हम दोनों को देखा, तो अंदर जाके जो उसने बात अपने घर वालों में कही वो हमने सुन ली, कहेगा आपको पता है और पाकिस्तानी भी इधर आए हैं। यानी जिस बात पे हो रहे थे हम, मुझे खुशी थी इस पे, वो भी खुश हो रहे थे। इंसान की कमजोरी है, इंसान तरसता है अपनों से बात करने के लिए, तो ये बोलने की ताकत और जुबान और बोलियां ये अल्लाह की शान है। फिर इसी तरह जल्दी से अब लिखें, सूरज और चांद को एक हिसाब का पाबंद बनाया, सितारों और दरख्तों को सजदा रेस किया, आसमान को बुलंद किया, मीज़ान कायम की, ज़मीन को सारी मखलूकात के लिए बनाया, यानी हर एक को उसकी जगह दिखा दी, ज़मीन में गल्ले और फल पैदा किए, दो मशरिक और दो मगरिब बनाए, दो समंदर बनाए जो आपस में मिले हुए हैं, और समंदरों से गूंगे और मोती निकाले, और जहाज बनाए जो समंदरों की तरह पहाड़ों में उठे रहते हैं। इन 11 चीजों के बनाने के बाद इंसान से 3 मुतालबे किए गए, सिर्फ आप देख लें, सिर्फ 3 मुतालबे हैं इतनी बड़ी कायनात देने के बाद। क्या? नंबर 1, मिजान में खलल ना डालो। मिजान में खलल डालना क्या होता है? कि अपने नामयावाल को नेकियों की तरफ झुकता रखो। कभी सोचा हमने इसको इस तरह? कितना जुल्म करते हैं अपने ऊपर जब हम अच्छे अमल नहीं करते। दूसरी बात जो हुक्म है वो क्या है? कि इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो। क्या मतलब है? तराजू लेके बैठ जाओ? नहीं, लोगों को उनके हकूक पूरे पूरे दो, हकूक और जिम्मेदारियों में तवाजुन। और तीसरा मुतालबा क्या है? कि तराजू में डंडी ना मारो। मतलब क्या है? धोखेबाजियां ना करो, दुनिया में इंसान बन के जियो। फिर उसके बाद इंसानों और जिन्नों की पैदाइश का जिक्र हुआ, इंसान को ठीकरी जैसे सूखे गारे से पैदा किया। सोचें अपने आप को, आज इस जिस्म पे मट्टी लग जाती है तो हम कहते हैं मैं गंदा हो गया, और बने किससे? खन खनाती हुई मट्टी से। और जिन्नात को आग की लपटों से पैदा किया। پھر آخر میں انسان اور جنوں سے ایک ہی سوال کیا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیا کریں اس صورت کو سنتے ہوئے؟ اللہ کی رحمتوں پہ مسلسل غور و فکر. میں نے صرف آپ کو دو پوائنٹ دیے، باقی آپ خود کر سکتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنے کا رویہ، اور سب سے بڑھ کے اس قرآن کو اپنی زندگی کے لیے رحمت بنانا ہے. کب تک؟ مرتے دم تک انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، آخری کام بھی جو ہم کر رہے ہوں وہ اسی قرآن کی خدمت ہی کر رہے ہوں، اسی حال میں موت ہے. رکوع نمبر 12 دیکھیے. کل من علیہا فان، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں. یقین ہے اس کا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے. تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے. تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جنات اور انس، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے. پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ جبکہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسے کہ سرخ چمڑا، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی باز پرس نہ ہوگی، کیونکہ سب کچھ تو ویسے کھلا ہوا دکھ رہا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، گناہگار اس دن حلیوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اور اس کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے، اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کھائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدِ. یہ ترکو نمبر 12، اس کا عنوان کیا ہے؟ فانی اور باقی کا رابطہ. فانی کون ہے؟ کل من، سب کچھ، اور باقی کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کیا ہے ان دونوں کا رشتہ آپس میں، فانی اور باقی کا رشتہ؟ ہر چیز جو زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے، رب کریم کی ذات باقی رہنے والی ہے. فانی باقی سے حاجات طلب کرتے ہیں، باقی رہنے والا ہر دن نئی شان میں ہوتا ہے. باقی رہنے والا زمین کے بوجھوں سے ان کا حساب لینے کے لیے فارغ ہو چکا. فنا ہونے والے زمین کے کناروں سے بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ باقی رہنے والے کا زور بہت ہے. اور اگر یہ فنا ہونے والے بھاگنا چاہیں تو آگ کے شعلے اور دھواں ان کے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد قیامت کا ہوش ربا منظر پیش ہوا. 6 باتیں ہیں قیامت کے منظر کے بارے میں. पूरे कुरान में बहुत जगह क़यामत के दिन का जिक्र है, लेकिन मैंने महसूस किया कि जितना यहाँ है ना, ये एक अजीब दिल को खींचने वाला है। आसमान सुर्ख चमड़े की तरह हो जाएगा, कभी देखा है लाल चमड़ा, बिल्कुल खिला हुआ। और वो आसमान याद करें जो बिल्कुल कभी मगरब के करीब होता है, बिल्कुल सुर्खी माल, खौफ आने लगता है। पहले कहते हैं कि जब कहीं कत्ल होता था तो उस दिन आंधी आ जाती थी, आसमान सुर्ख हो जाता था। पहले दौर के लोग कहते हैं, यानी कत्ल एक अंधेर है ना, खून आसमान पे भी सुकून आ जाता था। अब ऐसा क्यों नहीं होता कि फिर तो हर वक्त ही ये आसमान सुर्ख रहे, लेकिन क़यामत के दिन ये सुर्ख होगा। सुर्ख रंग को देखते ही एक अजीब सी जज्बातियत का एहसास होता है। फिर दूसरी चीज़, उस दिन किसी के गुनाह पूछने की ज़रूरत ही ना होगी। क्यों? हर चीज़ खुली किताब की तरह सामने होगा। किताबें यलकाहु मंशूरा, मुजरिम अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे। कैसे? दुनिया में भी पता चल जाता था, दुनिया में भी चेहरे मुजरिमों के जुर्म खोल खोल के साबित करते हैं। मुजरिमों को पेशानी के बल और बालों से पकड़कर घसीटा जाएगा, यानी यहां से पकड़ के ये बाल हों और इसको नीचे लटाया जाए और खींचा जाए और चलाया जाएगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था कि अल्लाह के नबी बालों के सर के बल कैसे चलेंगे, तो आपने फरमाया कि जिस जात ने कदमों के बल चलाना सिखाया वो माथे के बल चलाना भी सिखाएगा। बिल्कुल लिटरली उल्टा नहीं, जैसे आज भी कभी आप बच्चों को देखें कि अप्स एंड डाउन, सर नीचे हाथ करके चलते हैं, ये वो नहीं है। ये माथा जो है ना, ये माथा जमीन पे होगा और इस पे चलेंगे। आज अगर माथा जमीन पे करते हैं तो हम लेट जाते हैं, चलते नहीं। वहां क्या मंजर होगा, कभी आपने सोचा क्यों? माथों की बात क्यों हुई? माथा सिंबल है तकब्बुर का, इज्जत का। ये माथे झुकते नहीं थे अल्लाह के सामने, आजी नहीं थी। सजदा जिस्म तो करता था लेकिन दिल नहीं करता था। घसीटा जाएगा। फिर उस वक्त मुजरिमों से कहा जाएगा, ये है वो जहन्नम जिसको तुम झुठलाते थे। और मुजरिम खौलते हुए पानी और जहन्नम के दरमियान चक्कर लगाते रहेंगे। जैसे कभी इंसान बहुत तकलीफ दे चीज खा लेना, कोई मिर्च वाली, कोई मसाले वाली, तो चक्कर लगाता है। इसी तरह खौलते हुए पानी से उनकी अंतड़ियां कटेंगी, प्यास लगेगी तो खौलते हुए पानी की तरफ जाएंगे, जब पी लेंगे तो उसके बाद दूसरी तरफ तड़पते हुए जाएंगे। तड़पने का एक मंजर है, कभी आपने किसी को देखा हो तड़पते हुए? हमारा क्या अमल है इसमें? उस बाकी रहने वाले के साथ अपना रब्ता मजबूत करना है, और क़यामत के आने से पहले अपने अमाल को दुरुस्त करना है। रुको नंबर 13 को देखते हैं। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान। और उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, दो जन्नतें हैं, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे? दोनों जन्नतें बहुत सी टहनियों और शाखों वाली हैं। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे? इन दोनों जन्नतों में दो बहते हुए चश्मे हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे? इन दोनों जन्नतों में हर किस्म के मेवों की दो किस्में होंगी। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे? जन्नती ऐसे फर्शों पर तकिया लगाए होंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे, और इन दोनों जन्नतों के दरमियान मेवे करीब होंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे? और ये आयत सोचा करें जब इफ्तारी की टेबल पे भी बैठे हों। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान। समझ नहीं आ रहा होता खाएं क्या और छोड़ें क्या, आंखों में क्या डालें और मुंह में क्या डालें, पेट भर जाता है, निगाहें नहीं भरती। वहां शर्मीली निगाह वाली हूरे हैं जिन्हें इनसे पहले किसी जिन्न इंस ने हाथ नहीं लगाया। پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہے؟ پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ اور اس کے سوا دو جنتیں اور ہیں، پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ جو دونوں گہری سبزی مائل سیاہ ہیں، بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، کیا اب بھی تم اپنے رب کی نعمت کی تکذیب کرو گے؟ ان میں خوبصورت نیک سیرت عورتیں ہیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ حورم مقصوراتم فی الخیام، گوری رنگت والی حوریں خیموں میں رہنے والیاں، بازاروں میں پھرنے والیاں نہیں، جنتی بیویاں گھروں میں رہیں گی، اپنے حسن کی نمائش کرنے والیاں نہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان نے یا جن نے اس سے قبل، اور چھوا بھی نہیں، رش میں گھسنے کی وجہ سے ٹچ بھی نہیں کیا کسی نے چوڑیاں پہنانے کے ناطے سے۔ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم جھٹلاؤ گے؟ متقین علی رفرف، سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ پس اے جنو اور انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت اور جلال والا ہے۔ یہ ہے رکوع نمبر 13، اس کا عنوان کیا ہے؟ رب کے حضور پیشی کا خوف۔ جنتوں کی بات ہوئی اور جہنم سے بچنے کی باتیں ہوئی۔ جنت کی جتنی خوبصورت ڈسکرپشن اس صورت میں دکھتی ہے شاید کہیں اور نہیں دکھتی۔ ساری نعمتوں کو آپ جمع کر کے پوائنٹس کی صورت میں لکھیں گے، یہ آپ کا اپنا کام ہے۔ اس وقت میں چاہوں گی کہ کچھ اور بات اس پہ کرنے کی بجائے ایک دفعہ اس صورت کی تلاوت سنتے ہیں مشاری راشد کی آواز میں، اور پھر اس ترجمے کی روشنی میں اپنے آپ کو محسوس کرانا ہے کہ اس جگہ ہم ہیں کہ نہیں۔ کیونکہ جنت کے بارے میں باتیں بہت سی کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ جب یہ جنت کی بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اس دنیا کی زمین کی طرف، یعنی آسمان سے جھانک لے، تو آسمان اور زمین کے بیچ کا حصہ اس کے چہرے کی چمک سے روشن ہو جائے۔
خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربك ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلام الربان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.